व्यवस्था विवरण अध्याय चार। अब व्यवस्था विवरण चार का एक। अब मूसा व्यवस्था को लागू कर रहा है। अब हे इसराइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। व्यवस्था विवरण चार पहला और दूसरा पद। मूसा द्वारा कहे गए परमेश्वर के वचनों या परमेश्वर की आज्ञाओं में से कुछ घटाना या उनमें जोड़ना मना किया गया है। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणियों में जोड़ना या उनमें से घटाना मना है। परंतु विचित्र बात तो यह है कि लोग हमेशा वचन में जोड़ तोड़ करते रहते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम वचन में से ना तो कुछ घटाएं और ना ही कुछ जोड़ें। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में साचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। व्यवस्था विवरण चार पांच से नौ पद। अपने बच्चों को और आने वाली सब पीढ़ियों को ये आज्ञाएं तथा ये निर्देश सिखाना, क्योंकि संसार के किसी राष्ट्र को परमेश्वर ने ऐसा सौभाग्य प्रदान नहीं किया है। परमेश्वर उनके निकट था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से नियम बताता है। अब मूसा उन्हें याद दिलाता है और नई पीढ़ी को बताता है कि होरेब या सीनाई पर्वत पर किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें पूरी व्यवस्था प्रदान की और वे लोग उस समय कितने भयभीत थे, क्योंकि परमेश्वर गर्जन और बिजली के प्रकाश में उतरा था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के दसों वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की दो पट्टियों पर लिख दिया। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न देख पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहककर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। व्यवस्था विवरण 4:12-13 पद, 15-19 पद। मूसा उनके सामने परमेश्वर का एक सत्य स्थापित करना चाहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर की गर्जन सुनी तब उन्होंने उसका रूप नहीं देखा था। इसका एकमात्र कारण ये था कि वे किसी प्रकार उसका प्रत्यक्ष रूप न बना ले। उनके चारों ओर के राष्ट्रों के लोगों के पास देवी देवताओं के नाना प्रकार की मूर्तियां थी, स्त्री रूप, पुरुष रूप, मत्स्य रूप, दैत्य रूप आदि, परंतु परमेश्वर ने अपनी मूर्ति किसी रूप में बनाने से मना किया। मनुष्य के भीतर आराधना के लिए आंतरिक बल होता है जो मानवीय स्वभाव का अंश है। अतः परमेश्वर ने कहा, तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो। व्यवस्था विवरण 4:19। मनुष्य में निहित आराधना का बल उसे बाध्य करती है कि वो आराधना करे। बॉब डायलन ने कहा, आपको किसी न किसी की सेवा तो करना ही है। ये सच भी है, मनुष्य को किसी न किसी की आराधना के लिए बाध्य तो रहता है, परंतु त्रासदी तब है जब वो आकाश और पृथ्वी और इसकी सब वस्तुओं की सृष्टिकर्ता को त्याग कर उसके द्वारा सृजित वस्तुओं की, अर्थात स्त्री, पुरुष, पशु आदि की पूजा करता है, उसको दंडवत करता है, उससे प्रार्थना करता है। आराधना का आंतरिक बल मनुष्य में है, परंतु परमेश्वर वेदियों पर पूजा के पक्ष में नहीं है। जब एक सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें इस पहाड़ पर यहोवा की उपासना के लिए कहा है, तो कहता है कि हमें यरूशलेम में उसकी उपासना करना है, हम परमेश्वर की आराधना कहां करें? योहन्ना 4:20 पद। यीशु ने कहा, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना 4:23-24 पद। हम परमेश्वर को किसी रूप में बांध नहीं सकते, ना ही किसी प्रकार का रूप उसे दे सकते हैं। मैं तो मसीह यीशु के चित्रों से भी अलगाव रखता हूं। मैं ये नहीं कहता आप घर जाकर यीशु के चित्रों को फाड़ दे, ये आपकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, परंतु उन्होंने परमेश्वर का रूप नहीं देखा, अन्यथा वे मूर्ति पूजा आरंभ कर देते, और परमेश्वर कदापि नहीं चाहता था कि मनुष्य उसका कोई रूप बनाए। अतः उन्होंने आवाज तो सुनी परंतु उसे देख न पाए, अन्यथा वे निश्चय ही उसका रूप बनाते। मनुष्य में आराधना की ललक उपस्थित रहती है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई कि तू यर्दन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा, क्योंकि मुझे इसी देश में मरना है। मैं तो यर्दन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। व्यवस्था विवरण 4:21-22 पद। तुम्हारे कारण, मूसा जानता था कि उन्हीं के कारण परमेश्वर अपने वचन पर अटल था, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूल कर। व्यवस्था विवरण 4:23। भूल जाने का खतरा हमेशा ही रहता है। जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है वो जल उठने वाला ईश्वर है। व्यवस्था विवरण 4:23-24 पर लोगों का कहना है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भस्म करने वाली आग है। बाइबल इब्रानियों 12:29 में यही कहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये बड़ी रोचक बात है कि आग को परमेश्वर का प्रतीक माना गया है। आग से आप क्या समझते हैं? वैज्ञानिकों के मत अनुसार आग एरोमाइकोसिस है, अर्थात वो धीरे धीरे जलने वाली आग जो ब्रह्मांड के कण कण में है। ये अंततः सबका नाश कर देती है। कोई घर बनाता है तो उसी क्षण इसका विघटन आरंभ हो जाता है। ये क्या है? यही तो धीरे धीरे जलने वाली आग है जो हर जगह हर वस्तु में है। आपको ध्यान होगा कि यशया की पुस्तक में अशूरों ने उनके देश को घेर लिया था, तब लोगों की पुकार सुनकर परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर एक ही रात में 185,000 सैनिकों को मार डाला। जब सुबह उन्होंने देखा कि बैरियों के शिविर में केवल लाशें थी, सियोन के पापी थरथरा गए, भक्तहीनों को कंपकंपी लगा। यशया 33:14। तब उन्होंने यहोवा के लिए कहा था, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी। यशया 33:14। ये शब्द रहना वास्तव में बचकर भागना या निकट आना हो सकता है। मैं स्वर्ग में चढ़ू तो तू वहां है, मैं अधोलोक में उतर जाऊं तो तू वहां है। परमेश्वर की यही आग जो स्वर्ग में जलती है नरक में भी जलती है। सत्य तो यह है कि सब के सब परमेश्वर की आग में है, उससे कोई बच नहीं सकता। अब प्रश्न यह है कि वो आपके साथ क्या करती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या है। आग स्टील को पक्का बनाती है तो लकड़ी को भस्म भी कर देती है। बाइबल कहती है कि हमारे काम आग में परखे जाएंगे और हमारे कुछ काम भूसा और लकड़ी के समान धुआं हो जाएंगे, और जो बचेंगे उनका प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। भस्म करने वाली आग और जलन रखने वाला यहोवा, ये परमेश्वर की अति रोचक व्याख्या है। एक मिनट पद 31 में आइए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वो तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। व्यवस्था विवरण 4:31। जी हां, वो भस्म करने वाली आग है और उसके बैरी उस आग में भस्म हो जाते हैं। भस्म करना एक विशेषता है जो वो उसके बैरियों पर लाता है। यही आग हमें अनंत अस्तित्व देती है, क्योंकि हमारी अशुद्धियां सब जल जाती हैं। ये परमेश्वर की शोधन अग्नि है जो हमारे दिलों में जलती है, जिसके कारण हमारे मन का मैल जल जाता है और हमें सतत्व प्राप्त होता है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ, व्यवस्था विवरण 4:25। ये उसकी भविष्यवाणी है कि उनकी संतान एक दिन मूर्ति पूजा करेगी और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे, और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे। व्यवस्था विवरण 4:25-27 पर ये उनके पथ भ्रष्ट होने की भविष्यवाणी है और इसका परिणाम होगा कि वे अपने देश से निर्वसित होकर संपूर्ण विश्व में फैल जाएंगे, परंतु उनमें से कुछ लोग बचे रहेंगे। इतिहास का चमत्कार ये है कि वे विसर्जित होने के बाद भी आज एक राष्ट्र है। वे आज भी एक जाति है जिसकी इतिहास में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अपने देश के विस्थापित कोई जाति अपनी पहचान नहीं रख पाई है, परंतु यहूदी जाति आज भी है। और वहां तो मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। और जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ, क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है। व्यवस्था विवरण 4:28-30-32 पद। वो कह रहा है, अपने इतिहास को देखो और समझो, क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? ये सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुन पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। व्यवस्था विवरण 4:33-37 पर परमेश्वर कहता है कि उसने ये सब उनके कारण या उनके बड़े कामों के कारण नहीं किया है, उसने उनके पितरों के लिए उसके प्रेम के कारण ये सब किया है, कि तुझ से बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरे निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। व्यवस्था विवरण 4:38-39 पद। यहां एक बार फिर से अपनी आज्ञाओं और विधियों के पालन का आदेश। उन्होंने यर्दन के पूर्वी तट पर 3 शरण नगर स्थापित किए थे, जहां हत्या का दोषी शरण लेकर प्रतिकारी हत्यारे से सुरक्षित रह सकता था।